कल्पना कीजिए, दोपहर की बिल्कुल चिलचिलाती धूप है, एक विशाल बंजर रेगिस्तानी इलाके में एक साधारण सा तंबू लगा है, और अचानक ब्रह्मांड का रचयिता एक इंसान के रूप में वहां आता है और उस तंबू के मालिक के साथ ऐसे बात करने लगता है जैसे दो पुराने दोस्त बाजार में किसी सौदे पर मूलभाव कर रहे हों।
बिल्कुल एकदम आमने सामने।
हाँ, एक इंसान जो सृष्टि के रचयिता से आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि ठहरो, तुम एक पूरे शहर को ऐसे ही नष्ट नहीं कर सकते, क्या ये न्याय होगा? ये कोई आम घटना नहीं है। आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी हैरतअंगेज स्थिति की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो इन प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है।
और सच कहूं तो ये एक ऐसा दृश्य है जो सदियों से इंसान की सोच को चुनौती देता आ रहा है। आज हम डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज द्वारा प्राचीन उत्पत्ति के आख्यानों, विशेषकर सदोम और अमोरा की उस प्रसिद्ध घटना पर दिए गए उनके 14वें सत्र के विश्लेषण को खंगाल रहे हैं।
सही कहा।
लेकिन श्रोताओं को ये समझना होगा कि ये सिर्फ आग, गंधक और नष्ट हुए एक शहर की कहानी भर नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
इस घटना के भीतर ईश्वर और इंसान की मित्रता, न्याय की एक बहुत बारीक प्रणाली और इंसानी मन के धीमे धीमे होते पतन का बहुत ही गहरा मनोविज्ञान छिपा है।
और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण बातों को समझना है। पहला, ईश्वर और अब्राहम के बीच विकसित होती वो गहरी मित्रता।
दूसरा, दूसरों के लिए प्रार्थना या मध्यस्थता करने का महत्व।
और तीसरा, ईश्वर के न्याय और दया का वो अद्भुत संतुलन।
बिल्कुल, ये तीनों पहलू आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं।
ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं और इसकी शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस पूरी उथल पुथल की नींव रखी गई। न्याय और विनाश की बात करने से पहले हम हेब्रोन के बाहर एक बहुत ही शांत व्यक्तिगत दृश्य पर चलते हैं।
दोपहर के समय वाला दृश्य।
हाँ, अब्राहम अपने तंबू के दरवाजे पर बैठे हैं और तीन रहस्यमय अजनबी आते हैं। अब आज के नजरिए से देखें तो हम शायद सोचें कि ठीक है, कुछ मेहमान आ गए।
हाँ, जैसे आम तौर पर होता है।
मतलब जैसे आज हमारे घर कोई बड़ा VIP आ जाए तो हम घर साफ करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्राचीन मध्य पूर्व की उस दुनिया में इस पूरी घटना का मतलब कुछ और ही था, है ना?
देखिए, ये VIP वाली तुलना ना असल में उस समय की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाती।
अच्छा।
हाँ, आज अगर कोई मेहमान आता है तो हम उसे बस थोड़ा आराम देते हैं, लेकिन उस प्राचीन रेगिस्तानी दुनिया में जहाँ मीलों तक कोई होटल या सराय नहीं होते थे, वहाँ आतिथ्य सत्कार सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं था।
तो फिर क्या था?
ये जीवन और मृत्यु का सीधा सवाल था। मतलब अगर कोई मुसाफिर उस छिलछिलाती धूप में आपके पास आता है और आप उसे पनाह नहीं देते, तो आप असल में उसे रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ रहे हैं। ये एक अलिखित कानून था, एक पवित्र कर्तव्य।
अरे वाह, मतलब ये ऐसा है जैसे कोई भयानक सुनसान रेगिस्तानी हाईवे पर बिना पानी के फंसा हो और आप अपनी गाड़ी रोककर उसे अपनी बोतल का आखिरी पानी दे रहे हो।
एकदम सही, महज शिष्टाचार नहीं बल्कि जान बचाने का काम। और इसी संदर्भ में जब हम अब्राहम की प्रतिक्रिया देखते हैं तो वो हैरान करने वाली है।
हाँ, वो भागते हुए जाते हैं।
बिल्कुल, वो एक बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति हैं, लेकिन उन अजनबियों को देखते ही वो कड़ी धूप में दौड़ते हैं, उनके सामने झुकते हैं और फिर वो और उनकी पत्नी सारा मिलकर तुरंत पानी, ताजे पके हुए ब्रेड और बेहतरीन मांस का प्रबंध करते हैं।
यह एक बात बहुत दिलचस्प है कि अब्राहम और सारा दोनों इस काम में सहभागीदार हैं। मतलब वो अपनी आस्था में एक साथ मिलकर ये कर रहे हैं।
हाँ, दोनों को ओनर्स हैं इस पूरी प्रक्रिया के।
लेकिन यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही तकनीकी बात का जिक्र है जो समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये जो तीन आगंतुक हैं, ये देखने में तो इंसान लगते हैं, लेकिन डॉक्टर मैथ्यू स्पष्ट करते हैं कि इनमें से दो तो स्वर्गदूत हैं और एक स्वयं ईश्वर का प्रकटीकरण है जिसे यहवे कहा गया है।
बिल्कुल।
लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि ये कोई अवतार नहीं है, केवल एक भौतिक प्रकटीकरण है। तो इन दोनों बातों में क्या अंतर है? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है?
मैं कहूंगी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये बिल्कुल भी शब्दों का खेल नहीं है। देखिए, अवतार का मतलब होता है पूरी तरह से इंसान बन जाना,
मतलब इंसानी कमजोरियों के साथ।
हाँ, मानव स्वभाव, उसकी कमजोरियां, भूख प्यास और उसकी सीमाओं को पूरी तरह से ओढ़ लेना, जैसा कि बाद के धार्मिक ग्रंथों में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ जो ये प्रकटीकरण या मैनिफेस्टेशन है, वो ऐसा है जैसे ईश्वर ने बस उस विशिष्ट पल के लिए, उस संवाद के लिए एक भौतिक आवरण पहन लिया हो,
ताकि अब्राहम उनसे बात कर सकें।
बिल्कुल, ताकि अब्राहम उन्हें देख सकें और उनके साथ आमने सामने बैठकर भोजन कर सकें। ईश्वर मानव नहीं बना, उसने बस एक रूप लिया ताकि एक इंसान के साथ उसकी भाषा में जुड़ सकें।
और ये जुड़ाव किस स्तर का था, ये हमें उस भोजन के बाद की बातचीत में समझ आता है। ईश्वर कहते हैं कि एक साल के भीतर सारा को एक पुत्र होगा, और सारा जो तंबू के पीछे से सुन रही हैं, मन ही मन हंसती हैं।
क्योंकि स्वाभाविक भी है।
हाँ, वैज्ञानिक रूप से तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि वो उस उम्र को बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं जहां गर्भधारण संभव होता है। लेकिन जब ईश्वर उनसे पूछते हैं कि वो क्यों हंसी, तो वो डर के मारे झूठ बोल देती हैं, और तब वो मशहूर वाक्य गूंजता है, क्या ईश्वर के लिए कुछ भी कठिन है।
और ये वाक्य लूका 1:37 में मेरी के प्रसंग की भी याद दिलाता है
जी।
लेकिन इस हंसी और इस आश्वासन के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है।
वो क्या?
यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ईश्वर केवल एक अतिथि नहीं है, ब्रह्मांड का स्वामी होकर भी वो अब्राहम को अपना विश्वास पात्र बना रहा है।
मतलब एक कॉन्फिडेंट।
हाँ, प्राचीन ग्रंथों में जैसे यशाया 41:8 में अब्राहम को स्पष्ट रूप से ईश्वर का मित्र कहा गया है, और बाद में यूहन्ना 15:15 में यीशु ने भी अपने शिष्यों को मित्र कहा है। एक दास और एक मित्र में यही अंतर होता है कि स्वामी अपने दास को अपनी योजनाएं नहीं बताता, लेकिन एक मित्र से कुछ छुपाया नहीं जाता।
यहाँ मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसी मित्रता के कारण ईश्वर अब्राहम को एक ऐसा राज बताता है जो आने वाली पीढ़ियों का इतिहास बदलने वाला था। आगंतुक अब सदोम शहर की ओर देखते हैं।
न्याय की घड़ी।
हाँ, ईश्वर बताता है कि सदोम और अमोरा का पाप इतना भयानक हो चुका है कि वह नीचे जाकर देखेगा कि क्या सच में स्थिति उतनी ही खराब है जितनी उसकी पुकार उन तक पहुंची है।
ठीक वैसे जैसे बैबल की मीनार के समय हुआ था।
बिल्कुल वही भाषा इस्तेमाल हुई है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक उलझन है। अगर ईश्वर सर्वज्ञानी है, मतलब वो आसमान से या ब्रह्मांड के किसी भी कोने से सब कुछ एक साथ देख सकता है, तो उसे स्थिति की जांच करने के लिए शारीरिक रूप से नीचे जाने की क्या आवश्यकता है? क्या ये ईश्वर की क्षमता पर सवाल नहीं उठाता?
देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है जो अक्सर उठता है, लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज के विश्लेषण के अनुसार यहीं पर हम इस विवरण के पीछे के मनोविज्ञान को समझने में गलती करते हैं।
अच्छा, तो इसका असली मतलब क्या है?
ये नीचे जाना ईश्वर के ज्ञान की कमी को नहीं दिखा रहा है, बल्कि यह उसके न्यायिक चरित्र को स्थापित कर रहा है। प्राचीन काल में राजाओं और देवताओं की छवि ऐसी होती थी जो अचानक क्रोधित होकर मनमाने ढंग से बिना सोचे समझे सजा दे देते थे।
मतलब अपनी मर्जी से कभी भी किसी को मार दिया।
बिल्कुल, बहुत ही कैप्रिशियस या सनकी रवैया। लेकिन यहाँ ये विवरण ये स्पष्ट कर रहा है कि ईश्वर कोई सनकी शासक नहीं है, वो एक निष्पक्ष जांच करता है।
ओके, तो ये एक प्रक्रिया है।
हाँ, ये न्याय की एक पारदर्शी प्रक्रिया को स्थापित करने का तरीका है। सबूतों की जांच करना, स्थिति का जायजा लेना, ताकि न्याय होने के बाद कोई ये न कह सके कि सजा देने में जल्दबाजी की गई।
अरे वाह, ये दृष्टिकोण तो पूरी कहानी को ही बदल देता है। और इसी निष्पक्ष जांच के सिद्धांत को पकड़कर अब्राहम एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।
मोल भाव वाला कदम।
हाँ, वो ईश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं और सदोम के लिए सच में मोल भाव शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर उस शहर में 50 निर्दोष हों, तो क्या आप उन्हें भी दुष्टों के साथ नष्ट कर देंगे? और फिर वो धीरे धीरे इसे 10 लोगों तक ले आते हैं। अब्राहम का पूरा तर्क एक ही वाक्य पर टिका है, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न्याय नहीं करेगा?
और इस संवाद में इंसान की सोच और न्याय को देखने के हमारे तरीके की सीमाएं बहुत स्पष्ट रूप से उजागर होती हैं।
वो कैसे?
आप देखिए, अब्राहम अपने बेहतरीन मानवीय समझ के बावजूद केवल दो ही विकल्प देख पा रहे थे।
यानी एक बाइनरी सिस्टम।
हाँ, या तो ये या फिर वो। बिल्कुल, पहला विकल्प था कि पूरे शहर को नष्ट कर दिया जाए, भले ही उस प्रक्रिया में निर्दोष भी मारे जाएं। और दूसरा विकल्प था कि उन चंद निर्दोषों की खातिर पूरे शहर और वहां के घोर दुष्टों को बिना सजा दिए छोड़ दिया जाए।
और सच कहूं तो ये द्विआधारी या बाइनरी सोच तो आज की दुनिया में भी पूरी तरह हावी है, जैसे हम आज के कैंसिल कल्चर में देखते हैं।
हाँ, एकदम सही उदाहरण है।
अगर किसी समूह के कुछ लोगों ने कुछ गलत किया, तो हम पूरी संस्था को एक ही लाठी से हाँक कर कैंसिल कर देते हैं, या फिर किसी एक अच्छे काम की आड़ में पूरे भ्रष्ट सिस्टम को माफ कर दिया जाता है।
हम इंसानों के लिए सटीक न्याय करना लगभग असंभव ही लगता है।
हमारी न्याय प्रणाली अक्सर हथौड़ी की तरह काम करती है ना, सर्जन के चाकू की तरह नहीं।
क्या बात है, बहुत सही कहा।
लेकिन ईश्वर का तराजू इस बाइनरी सोच से परे हैं। डॉक्टर मैथ्यू समझाते हैं कि ईश्वर के पास एक तीसरा विकल्प था जिसके बारे में अब्राहम ने कल्पना भी नहीं की थी।
वो तीसरा विकल्प क्या था? वो था निर्दोषों को शहर से सुरक्षित बाहर निकाल लेना और केवल दुष्टों को उनके कर्मों का दंड देना। ये वैसा ही है जैसे अय्यूब या जॉब की प्राचीन पुस्तक में हम देखते हैं, जहां ईश्वर अपनी योजनाओं का हर विवरण स्पष्ट नहीं करता, लेकिन अपना न्यायपूर्ण चरित्र प्रकट करता है। अब्राहम को भी सब कुछ पहले से नहीं समझाया गया था।
मतलब अब्राहम को केवल ईश्वर के चरित्र की सटीकता पर भरोसा करना था।
बिल्कुल,
ये सच में एक गहरी अंतर्दृष्टि है कि कभी कभी जब हम अपने सीमित विकल्पों की दीवारों से सिर टकरा रहे होते हैं, तब असलियत में कोई तीसरा रास्ता भी मौजूद हो सकता है।
हाँ, जो हमें दिखाई नहीं देता।
अब इस तीसरे विकल्प के जमीन पर लागू होने की प्रक्रिया को देखने के लिए ये कथा एक बहुत ही तीखे विरोधाभास की ओर मुड़ती है,
लूत की तरफ।
हाँ, एक तरफ अब्राहम है जो हेब्रोन के बाहर एक सुरक्षित और धार्मिक दूरी से मध्यस्थता कर रहा है, दिन का समय है, और दूसरी तरफ उसका भतीजा लूत है
जो बिल्कुल विपरीत स्थिति में है।
एकदम विपरीत। लूत उसी सदोम के व्यवस्था में पूरी तरह से घुल मिल चुका है जिसका न्याय होने ही वाला है, और यहाँ समय भी बदल चुका है, शाम हो गई है और लूत सदोम के मुख्य द्वार पर बैठा है। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती, द्वार पर बैठने में क्या बुराई है? मतलब दिन भर के काम के बाद वो शाम को बस आराम कर रहा होगा, इसे श्रोत एक नकारात्मक संकेत के रूप में क्यों देखते हैं?
ये बहुत ही बारीक पॉइंट है, क्योंकि प्राचीन शहरों के वास्तुकला में ना शहर का द्वार या गेटवे केवल अंदर और बाहर जाने का रास्ता नहीं होता था।
तो और क्या होता था?
ये आज के समय में किसी पार्क के बेंच पर बैठने जैसा बिल्कुल नहीं था। शहर का द्वार उस समय की न्यायपालिका, व्यापारिक केंद्र और राजनीतिक सभा का मुख्य स्थान होता था। बड़े बड़े फैसले वहीं होते थे।
ओ, तो वो सत्ता का केंद्र था।
बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय शहर के द्वार पर बैठता है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि वह केवल उस शहर का निवासी नहीं रहा, बल्कि वह वहां के राजनीतिक और न्यायिक ढांचे का एक अभिन्न अंग बन चुका है। वह उस भ्रष्ट व्यवस्था में पूरी तरह से शामिल हो गया था।
यहाँ मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। मतलब वो केवल बुराई के पड़ोस में नहीं रह रहा था, वो बुराई का भागीदार बन चुका था। ये बुराई के साथ धीमे धीमे होने वाले समझौते का कितना भयानक मनोवैज्ञानिक चित्र है।
हाँ, लूत रातों रात वहां नहीं पहुंचा था।
सही बात है। पहले उसने सोदम की जमीन की ओर देखा, फिर तंबू पास लगाया, फिर अंदर रहने लगा, और अब वो सत्ता के केंद्र में बैठा है। और इस व्यवस्था की सड़ान तब पूरी तरह से सामने आती है जब वे दो स्वर्गदूत जो अब मनुष्यों के रूप में है लूत के पास आते हैं।
और शहर के लोग जो करते हैं वो खौफनाक है।
उसके घर को घेर लेते हैं और मांग करते हैं कि मेहमानों को बाहर निकाला जाए ताकि वे उन्हें जान सकें। स्रोतों के अनुसार उत्पत्ति 4.1 को आधार मानते हुए यहां जानना शब्द यौन हिंसा और बलात्कार के लिए एक रूपक के रूप में इस्तेमाल हुआ है।
ये उस समाज के नैतिक पतन का चरम था। आतिथ्य सत्कार, जो उस दुनिया का सबसे पवित्र नियम था, उसे वे सबसे विभत्स तरीके से तोड़ना चाहते थे।
बिल्कुल।
लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो केवल भीड़ का बर्ताव नहीं है, वो लूत की खुद की प्रतिक्रिया है।
हाँ, लूत का प्रस्ताव।
जब आप लगातार बुराई के बीच रहते हैं ना, तो आपका अपना नैतिक कंपास कितनी बुरी तरह टूट जाता है, ये लूत के उस कदम से दिखता है।
सच में, लूत बाहर आता है और उन दुष्ट पुरुषों को एक ऐसा प्रस्ताव देता है जो आज किसी भी इंसान को विचलित कर दे। वो कहता है कि वो अपनी कुमारी बेटियों को उस हिंसक भीड़ को सौंप देगा ताकि वे मेहमानों को छोड़ दें।
ये एक खौफनाक विडंबना है।
बिल्कुल, लूत उन मेहमानों को बचाने के लिए अपनी ही बेटियों की बलि चढ़ाने को तैयार है, जबकि वास्तविकता ये थी कि वे स्वर्गदूत खुद लूत को बचाने के लिए वहां आए थे।
डॉक्टर मैथ्यूज, इस घटना की तुलना न्यायियों या जजेस 19 की एक ऐसी ही भयावह घटना से करते हैं। ये साफ दिखाता है कि बुराई के साथ समझौता इंसान की तर्क शक्ति को कैसे अंधा कर देता है। अंततः स्वर्गदूतों को ही हस्तक्षेप करना पड़ता है।
वो भीड़ को अंधा कर देते हैं ना?
हाँ, वे उन दुष्टों को अंधा कर देते हैं ताकि वह दरवाजा ही न ढूंढ सके। लेकिन इस पूरी खौफनाक रात के बाद जो सुबह आती है वो ईश्वर की दया का सबसे भौतिक रूप दिखाती है।
वो कैसे?
स्वर्गदूत लूत से कहते हैं कि अपने परिवार को लेकर यहाँ से भागो क्योंकि शहर नष्ट होने वाला है। लेकिन लूत वो हिचकिचाता है।
यही बात मुझे हैरान करती है, वो हिचकिचाता है। जब आसमान से मौत बरसने वाली हो तो कोई हिचकिचाता कैसे है?
क्योंकि उसकी पूरी दुनिया, उसकी संपत्ति, उसका रुतबा, सब कुछ उस शहर से जुड़ा था। छोड़ना आसान नहीं था। और यही दया अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। जब लूत फैसला नहीं ले पा रहा था, तब स्वर्गदूतों ने सचमुच उसका और उसके परिवार का हाथ पकड़ा और उन्हें जबरदस्ती खींचकर शहर से बाहर निकाल दिया। अगर वे स्वर्गदूत लूत की इच्छा पर छोड़ देते तो लूत पक्का वहीं नष्ट हो जाता।
ये दया का एक बहुत ही शारीरिक और हिला देने वाला रूप है, लेकिन स्वर्गदूतों द्वारा जबरदस्ती बचाए जाने के बावजूद एक समझौतापूर्ण जीवन के प्रभाव इतने गहरे होते हैं कि उनसे पूरी तरह बाहर निकलना विनाशकारी साबित होता है।
हाँ, उसकी पत्नी के साथ जो हुआ।
बिल्कुल, स्वर्गदूत उन्हें हिदायत देते हैं कि पहाड़ों की ओर भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे ये आदेश हमेशा अजीब लगता था, मतलब अगर आपके पीछे एक पूरा शहर जल रहा है तो एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है कि मुड़कर देखें कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी सख्ती क्यों थी इस बात में?
वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आदेश था।
मतलब अतीत को छोड़ना।
हाँ, उस शहर की सीमाओं से बाहर निकलना काफी नहीं था, उस शहर की मानसिकता को पूरी तरह से नकारना जरूरी था। पीछे मुड़कर देखने का अर्थ था उस अतीत के प्रति मोह, उस छोड़े गए भ्रष्ट जीवन के लिए एक अफसोस।
और लूत की पत्नी ठीक यही करती है?
दुर्भाग्य से हाँ, उसका शरीर तो शहर से बाहर आ गया लेकिन उसका दिल अभी भी सदोम में ही फंसा था। वह पीछे मुड़कर देखती है और नमक का खंभा बन जाती है। लूका 17:32 में भी इसका जिक्र है। और आज भी मृत सागर के दक्षिणी छोर पर नमक के ऐसे खंभे देखे जा सकते हैं।
और इसके बाद जो विनाश होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला। आसमान से जलता हुआ गंधक बरसता है। ये दृश्य प्राचीन जलप्रलय की याद दिलाता है,
जहाँ पानी ने सब कुछ नष्ट किया था और यहाँ आग सब कुछ राख कर रही है।
लेकिन इन सब के बीच स्रोत सामग्री एक ऐसी बात की ओर ध्यान खींचती है जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है।
उत्पत्ति 19:29 वाला हिस्सा।
जी, उत्पत्ति के 19वें अध्याय में लिखा है कि जब ईश्वर ने उन शहरों को नष्ट किया तो उसने लूत को याद नहीं किया बल्कि उसने अब्राहिम को याद किया।
ये इस पूरे आख्यान की सबसे शक्तिशाली चाबियों में से एक है। अगर मैं इसकी तुलना उत्पत्ति 8 की जल प्रलय की कथा से करूं, जहां ईश्वर ने नूह को याद किया और फिर हवा या रुआख भेजी, वहां नूह अपनी खुद की धार्मिकता के कारण बचा था।
लेकिन लूत के मामले में ऐसा नहीं था।
बिल्कुल नहीं, यहाँ लूत की अपनी कोई ऐसी धार्मिकता नहीं थी जो उसे बचा सके। ये पूरी तरह से एक प्रॉक्सी बचाव था। लूत केवल इसलिए बचा क्योंकि पहाड़ियों पर सुरक्षित बैठा एक दोस्त अब्राहम उसके लिए प्रार्थना कर रहा था।
ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। लूत बच तो गया लेकिन उसका अंत कोई जीत की कहानी नहीं थी। वो बहुत ही दुखद था। वो एक सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंचने के बजाय ज़ोआर के पहाड़ों में एक गुफा में जाकर छिप गया। डर और निराशा ने उसे घेर लिया।
और फिर जो हुआ वो इस पतन का सबसे विभत्स हिस्सा है।
उसकी बेटियों वाला प्रसंग। हाँ, उसकी बेटियों को लगा कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है। वे अपने ही पिता को शराब पिलाकर उसके साथ अनाचार करती हैं ताकि वंश बच सके।
ये घटना सीधे तौर पर नूह के शराब पीने वाली घटना की याद दिलाती है। एक भयानक तबाही से बचने के बाद शराब के कारण पतन। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो उसके परिणाम बहुत भयंकर थे। इस कृत्य से मोआबी और अमोनी राष्ट्र उत्पन्न हुए, जो 1 शमूएल और 2 इतिहास की किताबों के अनुसार भविष्य में इसराइल के सबसे क्रूर दुश्मन बने।
यहाँ हमें दो विरासतों के बीच का अंतिम विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ अब्राहम की महान विरासत है इसहाक के रूप में, और दूसरी तरफ लूत की यह घिनौनी विरासत
जिसकी नींव समझौते पर रखी गई थी।
तो इन सब का क्या अर्थ है? हमने इस पूरी गहन चर्चा में क्या देखा? हमने देखा कि कैसे सृष्टि का रचयिता एक इंसान को अपना विश्वास पात्र बनाता है, कैसे सटीक न्याय की वो मांग, वो तीसरा विकल्प हमारी सीमित सोच को तोड़ देता है,
और कैसे बुराई के साथ किया गया छोटा सा समझौता भी बड़ी विपत्ति की ओर ले जा सकता है, जैसा कि 2 पत्रस 2 में भी चेतावनी दी गई है।
बिल्कुल, लेकिन लूत की कहानी हमें एक ऐसे विचार के साथ छोड़ जाती है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर सकता है। हम अक्सर अपनी सफलताओं और सुरक्षा पर बहुत गर्व करते हैं
कि हम अपनी वजह से बचे।
हाँ, लेकिन लूत केवल इसलिए बचा क्योंकि ईश्वर ने अब्राहम को याद किया। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे अपने जीवन की कोई सुरक्षा वास्तव में किसी और की गुप्त प्रार्थनाओं का परिणाम है? क्या हम किसी और के अब्राहम होने की वजह से बचे हुए हैं?
ये बहुत ही गहरा सवाल है।
और शायद उससे भी बड़ा सवाल यह है, आज किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो विपत्ति की ओर बढ़ रहा है, क्या हम उनका अब्राहम बनने को तैयार हैं? इन्हीं विचारों के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और गहराई में उतरते रहिए।